मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 26 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो IAS की पुस्तकें होती हैं उनकी सीमाओं के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले एक घटना को आइए देख लेते हैं जो बहुत संक्षिप्त में है, और इसके बाद इस पर विस्तार से मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा। घटना दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हॉकी के हमारे महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर नहीं रहे। 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली मोहाली में, जिन्होंने बकायदे 1948, 1952 और 1956 के जो ओलंपिक हॉकी हुए थे उसमें भाग लिया था, और जो ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, उन्होंने ओलंपिक के इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में इन्हें शामिल किया है। दोस्तों, इनके बारे में कुछ बातें मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट में शेयर की है, इसीलिए मैं अब इन पर कुछ विस्तार से बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि आज के अखबारों में बहुत विस्तार के साथ इन पर लिखा गया, शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा जिसने इन पर न लिखा हो और विस्तार से न लिखा हो। अदरवाइज तो वो छोटी सी एक न्यूज सी बना करके बात को खत्म कर सकते थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व इतना विशाल रहा है, इनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी रही हैं कि सभी अखबारों ने ट्रिब्यूट देने के रूप में बहुत विस्तार के साथ इनकी जीवनी के बारे में लिखा है। मेरा सजेशन है कि आप सबको उसे पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए और कई कई बार पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि यही वे जीवंत प्रतीक होते हैं, जीवंत प्रेरणा के स्रोत होते हैं जिनसे हम अपने जीवन के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सच पूछिए तो ये हमारे लाइफ के मॉडल्स होते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी सलाह है, मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसे फॉलो करेंगे, और सच पूछे तो आज के विषय के रूप में, न्यूज़ के रूप में बस यही है। अब मैं मुख्य विषय पर थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। मुख्य विषय के लिए मैंने बड़ा पटांग सा और आप सबको निराश और हताश करने वाला विषय चुना है दोस्तों, और वह है IAS की पुस्तकों की सीमाएँ। लगातार मेरे पास मेल आते हैं, शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन मुझसे ये प्रश्न न किया जाता हो कि सर हमें किताबों की लिस्ट बताइए। और सच पूछिए तो किताबों की लिस्ट अगर आप YouTube वगैरह पे चले जाएं या दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके वेबसाइट पर चले जाएं तो किताबों की लिस्ट मौजूद है। यहां तक कि हमारे जो टॉपर्स होते हैं हर साल, उनसे पूछा ही जाता है कि आपने किन किन किताबों से तैयारी की है, और वो बाकायदे अपनी लिस्ट बताते हैं। और आप अगर उन सभी लिस्ट को देखेंगे तो बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उन किताबों से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, उन्हीं किताबों से हर कोई लगभग अध्ययन करता है। कुछ किताबें तो ऐसी हैं कि हर कोई उसी से अध्ययन करता है, तो फिर उससे हर कोई सेलेक्ट क्यों नहीं होता? आप कह सकते हैं कि जब सीट ही कम है, पद ही कम होते हैं, तो हर कोई कैसे सेलेक्ट हो सकता है? चलिए, मैं मान सकता हूं, लेकिन यहां मेरी चिंता इस बात को है कि लेकर के है कि नंबर में इतने डिफरेंस फर्क क्यों आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, लोग एक किताब लक्ष्मीकांत जी की किताब है उनको रेफर करते हैं, और नो डाउट कि वो एक अच्छी किताब है, सभी ने वो पढ़ी है। तो एक स्टूडेंट है जो 250 में से उसी पेपर में 110 मार्क्स लेकर के आता है, इसमें थोड़े से मार्क्स कमी मिलते हैं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट हैं वो 40-50 मार्क्स पे रुक जाते हैं, किताबें वही पढ़ी हैं। हो सकता है कि जिसको 40-50-40-50 मार्क्स मिले हैं उसने कई कई बार पढ़ी हो और उसे बिल्कुल रट लिया हो, और जिन्हें 110 मार्क्स मिले हैं उन्होंने केवल 2-3 बार पढ़ी और उन्होंने सोचा हो कि मेरा काम चल गया। तो दोस्तों, यहां मैं आपको किताबों की लिस्ट नहीं बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं निराश करने जा रहा हूं। आपको सिविल सर्विस के बारे में यह समझना होगा कि किताबें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। किताबें जरूरी तो हैं, अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव चाहिए या तो ब्रिज चाहिए, क्योंकि तैरकर पार करने की स्थिति उस नदी की नहीं है, उस नदी में इतना प्रवाह है कि कोई तैरकर पार नहीं कर सकता, यानी कि आप बिना किताबों के तो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि बिना किताबों के आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है कि सर फिर किताबें बताइए कौन कौन सी हैं, जब वो जरूरी है तो हमें किताबें तो बताइए। दोस्तों, मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, लेकिन मेरी जो मुश्किल है, जिस संकट की मैं यहां बात कर रहा हूं, कि मैं अगर आपको किताबों के नाम बता भी दूं तो वो किताब अपने आप में मुकम्मल नहीं है, यानी कि पूरे नहीं हैं, उनकी बहुत अधिक सीमाएं हैं। जब मैं कह रहा हूं बहुत अधिक सीमाएं, तो मैं सीमाओं के बारे में ही इसमें बात करूंगा। तो वो कौन सी सीमाएं हैं? सीमाएं दोस्तों ये हैं, दो तीन तरह की इसकी सीमाएं हैं। पहली बात तो यह कि हर किताब का अपना अपना चरित्र है। जैसे आप एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए, तो एनसीईआरटी की किताबों का अपना एक डिफरेंट किस्म का करेक्टर है। और मजेदार और कह लीजिए कि आपको संकट में और भ्रम में डालने वाली बात यह है कि उनका जो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर है एनसीईआरटी की किताब का दूसरी किताबों की तुलना में, तो एनसीईआरटी की खुद जो किताबें हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर हैं। अब क्या किया जाए? जैसे अगर आप उठा करके देखें, मेरी बात को आप बकायदे जाकर के प्रैक्टिकली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप जांच परख कर सकते हैं कि जैसे आप ज्योग्राफी की किताब उठा करके देखिए, है ना, 11th 12th की ज्योग्राफी की किताब उठा करके देखिए, तो एक ठीक ठाक किताब है एनसीईआरटी की। लेकिन आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन या जो राजनीति विज्ञान की है उनकी किताब उठा करके देखिए, तो राजनीति विज्ञान की जब आप किताब देखेंगे तो उसमें तथ्य समझाए तो गए हैं, तो वो जो समझाए गए हैं वो बहुत ही बेसिक करेक्टर को लेकर के समझाए गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वहां आपको गायब सा मिलेगा, वो आपको पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जब आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत की किताब में कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन ये जो समझाने वाला पोर्शन है ये गायब मिलेगा। लक्ष्मीकांत की किताबों को पढ़ने के बाद आप पॉलिटी को नहीं समझ सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ सकते हैं लेकिन पॉलिटी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद तो आपको थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से पॉलिटी समझ में नहीं आएगी। तो अब आप पूछेंगे तो फिर हम पॉलिटी समझे कैसे? ये किताबों की सीमाएं हैं, बहुत ही जबरदस्त सीमाएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स नहीं कहना चाहिए, यह है इकोनॉमी। अब आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पर किताबें उठा करके देखिए, सच पूछे तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीजें बताती हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजें भी समझना है तो इससे तो पढ़ना है। लेकिन जब आप फर्दर स्टडी करना चाहेंगे कि थोड़े से हायर लेवल पर जाना चाहेंगे, तो आपके सामने दो तरह के संकट खड़े होंगे और यही आपकी किताबों के सीमाएं हो जाती हैं। पहला तो संकट है कि आप कोई भी किताब उठाएंगे तो उसका सिलेबस इतना ज्यादा दिया हुआ, यानी कि उस किताब का सिलेबस, मैं सिविल सर्विस का नहीं कह रहा हूं, कि आपके सामने यही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि इसमें से हमारे लिए कौन कौन से काम के हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है उतना डिफाइंड नहीं है। अर्थव्यवस्था पर तो सिलेबस थोड़ा सा डिफाइंड जैसा है, उसको तो आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है यानी उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो कहीं है ही नहीं आपके सिलेबस में यूपीएससी के। जबकि अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो इकोनॉमिक्स पर जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से 75% क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर होते हैं। अब आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? आपको तैयारी करनी है, और वैसे भी जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो आप अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते। मेंस के क्वेश्चन तो बिना सिद्धांतों को समझे आप कर ही नहीं सकते, जो एक्सप्लेनेटरी है थोड़े बहुत कर लेंगे कृषि वगैरह पर जो पूछा गया है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि अब इसके लिए क्या करें। जब आप किताबें उठाते हैं तो वहां किताब लिखने वाले ने अपने ढंग से काम किया है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने ढेर सारी चीजें डाल दी हैं और उसमें से जो चीजें डाली हैं मुश्किल से आपके 25-30% काम की है। अब आपके सामने फिर संकट है कि भैया वो 25-30% कैसे छांटे। तो दोस्तों आप सब किताबों के बारे में पूछते हैं, ये आपकी समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए मैं अंतिम उस पर बात कर रहा हूं, इस समस्या के समाधान के लिए बाकायदे किताबों की लिस्ट भी है। और सच पूछिए तो उन किताबों की लिस्ट से परे जाकर के बताने के लिए कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है, क्योंकि वही चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम करें क्या? तो करने के लिए केवल यही बताया जा सकता है, कहा जा सकता है, सजेस्ट किया जा सकता है कि उन किताबों से आप टॉपिक को समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि आप बकायदे यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से आप सिलेबस को समझिए, जो सिलेबस दिया हुआ है उसके माध्यम से सिलेबस को समझिए, और फिर उसे करंट अफेयर्स से जोड़िए, तब तो आपको सिलेबस समझ में आएगा। और जब एक बार आप सिलेबस को समझ लेते हैं तब फिर आप किताबों को देखिए, तब फिर आपको पता लगेगा कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर मेरे काम के हैं, और ये जो चैप्टर भी हैं इसमें से कितना हिस्सा मेरे काम का है। जरूरी नहीं कि एक चैप्टर आपने ले लिया मांग और पूर्ति को, डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर आपने चुन लिया, डिमांड एंड सप्लाई तो इतने विस्तार के साथ मतलब चर्चा की गई है कि आप दिमाग ही बिल्कुल उड़ जाता है, और जबकि आपकी जरूरत की चीज है भी नहीं। तो फिर यह कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स में से कौन सा हिस्सा कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें उस किताब में न भी हों, और ये मैं अनुभव के आधार पर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं तो इन सारे संकटों से मैं बहुत बुरी तरह से जूझा हूं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत बुरी तरह से मैं इन संकटों से जूझा हूं, इसलिए आपसे इस संकट के बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर जहां ये चीजें नहीं मिल रही हैं उन्हें आप ढूंढें कि वो कहां से मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर किताब को सेलेक्ट कर लेते हैं या दो तीन किताबें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप ये बिल्कुल मत मान करके चलिएगा कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, वो सारी बातें मेरे काम की हैं। ऐसी गलत फहमी मत पालिएगा। दूसरी बात कि किताबों से आपने सब कुछ पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो ये मत कभी समझने की भूल कीजिएगा कि चूंकि आपने किताबों से सब रट लिया है, समझ लिया है, तो मेरी तैयारी पूरी हो गई है। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट है वह है करेंट अफेयर्स। तो जब तक आप अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को करेंट अफेयर्स से जोड़ करके नहीं देखने की आदत डालेंगे, तब तक मान करके चलिए कि आप कभी भी सिविल सर्विस के सिलेबस और प्रिपरेशन के साथ न्याय नहीं कर सकते। और यह इतनी बड़ी चुनौती है मित्रों, मैं समझ सकता हूं, इतनी बड़ी चुनौती है कि जिसका कोई बहुत सीधा साधा और सरल हल मुझे दिखाई नहीं देता। एक ही हल दिखाई देता है कि जो आपको संस्थान पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको बताया जाता है, वहाँ अगर आप सतर्कता के साथ चयन करके और उनमें उनको ध्यान से सुनेंगे तो जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उससे आप एक अनुमान सा लगा सकते हैं कि नहीं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है। तो बाहरी मदद के रूप में मुझे लगता है कि यहीं से आपको थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है, क्योंकि जो संस्थान हैं या जो इस तरह के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मान करके चलिए कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपका अनुभव क्षेत्र अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनका अनुभव क्षेत्र तो आपकी अपेक्षा व्यापक ही है। हाँ, उनका जो अनुभव क्षेत्र है कितना व्यापक है और कितना गहरा है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उससे आपको मदद मिलेगी ही। अदरवाइज दूसरा क्या चाह रहा है? दूसरा यही चाह रहा है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे आप मदद लें, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको कुछ बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्का है और वो ये है कि आपको सिलेबस की जानकारी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए और बेहतर जानकारी होनी चाहिए, सुपरफिशियल जानकारी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: पूजा यादव, कमलकांत चौबे, सिद्धार्थ कटारिया रामपुर उत्तर प्रदेश से, विनय कुमार, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, नरेश शर्मा, वैभव काले बुल्डाना महाराष्ट्र से, नवदीप सिंह लुधियाना पंजाब से, अर्जुन कुमार, हैरी राजपूत और आदित्य सोनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।